अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण आय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि नजिवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नये माम शरणान्तिके। अंगश्यामलिं छटा विरभितो मन्दीकृतेन्दे वरं जडञ्जागुडरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया। वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितम् माधुर्य कादम्बरी चतुर्थ अमृत वृष्टि। पूर्वे द्वितीय अमृत वृष्टि पंचम अनुच्छेद थे। भजन क्रिया दुईटी दो भेद अनिष्ठिता और निष्ठिता भेद का वर्णन किया जा चुका। निष्ठिता अनिष्ठिता और निष्ठिता का वर्णन किया जा। छठे अनुच्छेद में छह प्रकार की अनिष्ठिता उत्साहमयी घंतरना वृण विकल्पा तरंग रंगिनी आदि ये सब छह हो गया है। इसके प्रकार दूसरे प्रकार की निश्चिता भजन क्रिया की बात नहीं की गई, अनर्थ निवृत्ति की बात कही गई। कितने प्रकार के अनर्थ हैं, उनकी निवृत्ति कैसे हो सकती है, पूर्णा पूर्णिमा आतंतिका इत्यादि का भी वर्णन किया जा चुका है। और यहाँ पर अब निष्ठिता भक्ति का अब वर्णन कर रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर। निष्ठिता भक्ति के संबंध में श्रीमद्भागवत के दो श्लोकों को उद्धृत कर करके बतला रहे हैं। श्रीमतान स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो झभद्राणी विधिनोत सुहित सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर भवति भक्तनिष्ठिकी। संतों के नित्य सुहित भगवान श्री कृष्ण के जस और कीर्तन दोनों ही मनुष्य को पवित्र करने वाली हैं। चाहे कीर्तन हो चाहे श्रवण हो। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करते करते भगवत प्राप्ति हुई और परीक्षित महाराज जी ने श्रवण किया। राय रमानंद प्रभु जी ने कीर्तन किया, कीर्तन कराया महाप्रभु ने और स्वयं सुना। इस तरह से अपने कथा सुन ले, कृष्ण इतने कृपालु हैं जो उनकी कथा सुनता है उनके हृदय में कथा के रूप में विराजमान, कथा ही प्रवेश कर जाती है और कथा के रूप में खुद ही विराजमान हो जाते हैं और सद्बंधु की भांति उसके हृदय में जितनी भी अशुभ वासनाएं होती हैं उसको नष्ट करके अपने बैठने के लिए उचित सिंहासन, निर्मल सिंहासन बना लेते हैं। जैसे किसी कोई मित्र किसी मित्र के घर में गया और वहां पर देखा जैसे उसके घर में चेयर पड़ी है किंतु थोड़ी सी मैली है, तो रुमाल निकाला और चेयर को साफ करके तब बैठा। ऐसे ही भगवान अपने सुहृदों के, जो भगवान की कथाओं को सुनता है श्रद्धा पूर्वक और उनका कीर्तन करता है, उनके हृदय में अपने आप विराजमान हो करके देखते हैं कि तो बहुत सा अनर्थ है, धूल अनर्थ रूपी धूल है, खुद ही झाड़ बैठा करके और फिर उसमें विराजमान हो लेते हैं। श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से, चाहे भागवत हो श्रीमद् भागवत, भागवत की सेवा क्या है, श्रवण कीर्तन, और भगवत भक्तों उनकी कथा सुनना, उनकी सेवा करना इत्यादि से जब हृदय की अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, भागवत के श्रवण से भी होता है, सतान प्रसंगम विज्ञ संविदौ इत्यादि हो जाता है, या वैष्णव की सेवा जो दुष्संत है ऐसे जो भागवत कथा का कीर्तन करते हैं उनका सेवन भी यदि किया जाए तो अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति नैष्ठिकी भक्ति उदित होती है। अब नैष्ठिकी भक्ति किसको कहते हैं, उपरोक्त दोनों श्लोकों में कहा गया है कि श्रीमतां स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, अर्थात भगवान के जस का श्रवण और कीर्तन करने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, वे सुनने वालों के इस वचन से अनिष्ठिता भजन क्रिया की बात कही गई है। वे कथा सुनने वालों के पहले तो हृदय में प्रवेश करके अनर्थ को दूर करते हैं, यहां पर अनिष्ठता भक्ति की बात कही गई, इसलिए यहां पर ऐसा ज्ञात होता है कि उसके हृदयंतस्तो भद्राणी अभद्र है, अभद्र माने अनर्थ है जो कि इसमें वर्णन किया गया है, हृदय में प्रवेश करके अनर्थों को अमंगलों को नाश कर देते हैं कृष्ण, ऐसा वर्णन किया गया है। इस वाक्य के द्वारा अनर्थ निवृत्ति की बात कही गई है, यहाँ पर तो अनर्थ निवृत्ति की बात कही गई, अतः अनिश्चिता भजन क्रिया के पश्चात ही अनर्थ निवृत्ति का क्रम उपलब्ध होता है जैसा कि ग्रंथ में वर्णन किया गया। अनिश्चिता थी, अब उसके अनर्थ सब क्या क्या है, कैसे दूर होती है इत्यादि वर्णन किया गया। अब द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भगवत सेवया भागवत सेवया तत् नित्य भागवत और भक्तों के सेवन से फल से अनर्थ नष्ट प्राय होने पर, अनर्थ प्राय मैंने अभी अत्यंत की नहीं हुआ है, अभी पूर्ण भी नहीं हुआ है, बहु का बहु देश बर्तनी ये हो गया है, अभी कितना, अभी 2 पैसा बाकी है, बाकी 98 पैसा हो चुका है। इस वाक्य से अनर्थ निवृत्ति के स्तर में भी कोई कोई प्रबल अनर्थ किसी किसी अंश में निवृत्त नहीं होता है, कुछ कुछ अनर्थ रह जाते हैं, ऐसा होता है।
Fourth shower connector. In the second shower connector, Sri Vishnu Chakravarti Thakur described two stages of bhajan, rather Nishita bhajan and Anishita bhajan. But the description of Nishita bhajan has not been done yet. Rather, first there was a description of Anasana Vritti. The six types of Anishita bhajan were described, being Ganatara, Satamayi, Guru Vikalpa, etc. And these were also, the freedom from these were given in six stages, freedom from these announcements, Ekodesh, Vakuni, Mokodesh, Vakuni, Prayati, Adyantiki, etc. Therefore, both Anishita Bhajan and Nishita Bhajan, evidence has been taken from Srimad Bhagavatam. Shrimatam Svakata Krishna Punishavitikanam Vidyasthatiya Mata Nikano Vishvishitam Nasta Prayasu Vajrasa Vityam Bhagavate Vajraya Bhagavitana Shloka Bhakti Bhavati Naishtiki. So, from these two verses, the indication has been given both of Anishita Bhajan and Nishita Bhajan. There, Srimatam Svakata Krishna is described that Krishna, who is the best well-wishing friend of those devotees who like to hear his perform Shravan Kirtan of his auspicious names, forms, qualities and pastimes. Especially that devotee who is inclined to continuously perform Shravan Kirtan, then Krishna purifies the heart himself. The example is like Sumira Goswami, who achieved perfection by continuous kirtan, and Pariksit Maharaj, who achieved perfection by continuous hearing of that kirtan, or like Sri Ramananda Roy, who performed continuous kirtan, and Chaitanya Mahaprabhu, who also performed continuous hearing of that kirtan. Like Hari Katha himself, which is Krishna, directly enters the heart and purifies the heart like a friend. For example, if we go into a friend's house and he says, take a seat, if that seat is a little dirty, then our friend will not have to, and that friend himself will clean the chair and sit in it himself. In the same way, Krishna, who is a well-wishing friend of the devotee who likes to perform Hari Kirtan, Krishna himself enters the heart, purifies the heart, and sits in the heart like an asana, like a seat. Therefore, Nityam Bhagavat Sevya, one should continuously perform service of the two types of Bhagavatam. One Bhagavatam is the Shastra Bhagavatam, and one performs that seva by continuously hearing. And the other type of Bhagavatam is the devotee, and the devotee should constantly serve him, the Bhakta Bhagavat. Therefore, Kapila Dev has also said, Satamka Sangam Mama Vyatya Samgiro Samgiro Bhavanti Vidkara Rasayana Katha. By always hearing the Rasayana Bhagavad Katha, which is like a nectarian tonic, then all auspiciousness is destroyed. Then Naistiki Bhakti or Nishtika Bhakti, then Nishtika Bhajan or Naistiki Bhakti makes its appearance in the heart. There was already been said, Shrimatam Svarakata Krishna Punya Shravana Kirtana. This Shravana Kirtana of Hari Katha, by this, all inauspicious things are destroyed. So, first there is a description of Anishita Bhajan, then Anasana Vritti, and after that Anasana Vritti, when Anasana are expelled from the heart, then Nishita Bhajan, or fixed Bhajan, makes an appearance. Here, Abhadrani means anasas. So, in the first verse, Srimatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana, this is the description of Anishita Bhajan. And then the next verse, Nasta Prayasu Bhajasu Nitya Bhagavat Sevya, that is the description of Nishita Bhajan. Nasta Prayasu means almost. Like we heard the five levels of freedom from anatas, there was Ekodesh Bhakti, Bahudesh Bhakti, then Prayati. So Nasta Prayasu there indicates Prayati, where there's only like 10% of anattas remaining. Hari Om.
10%.
निष्ठा माने क्या? निष्ठा माने की निश्चलता, मन निश्चल हो जाए, स्थिर हो जाए। भजने से स्थिरता प्राप्त हो ले ताके निष्ठिता भजन क्रिया बोला है। भजने के मन लगेबार चेष्टा करा जाते मन स्थिर हुए आमी हरि नाम करी हरि कथा श्रवण करी मने मने हरि कथा कुछ स्मरण करी किंतु अनर्थ अवस्था ते साधक चित चंचल थाके से व्यर्थ मनोरथ हुए आर करते पारे ना केनो ना उस समय लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कसाय रसास्वा ए बाधाएं अंतरे ते उपस्थित है। लय माने की समान आर कीर्तन स्मरण समान कीर्तन स्मरण उत्तर उत्तरोत्तर अधिक निद्रा आने का नाम लय है। हरि कथा श्रवण करछी कीर्तन करछी जोरे जोरे ताने निद्रा कम आसबे आर श्रवण करछी ताले कुछ कुछ निद्रा तंद्रा आसबे। इसमें बहुत से लोग सो रहे होंगे अनेके घुमाइते से है आर स्मरण करवार समय तो निश्चित रूपे थे स्मरण करते गेलो आर निद्रा ए अवस्था ते एई सब उपयुक्त न है। एई तमो गुण के उत्पन्न है अभी तम गुण अनर्थता कुछ कुछ परिमाणे दूर होते लगे अभी तम आछे भा साधकगण के भजन रसास्वादन करने से वंचित करते एटा वंचित करे समन कीर्तन आदि माधुर्य आस्वादन करते पारे ना एई अनर्थ कर यदि निद्रा लाग ताले की रकम करते पारे विक्षेप समन कीर्तन स्मरण आदि समय ते व्यवहारिक स्मरण होते लागलो हरि कथा सुनछी मने मने बाड़ीर कथा मने होते लगल अन्य कोनो कथा विषय कथा मने होल चित्त चंचल हो गल आर हरि कथा स्मरण हो एकांति के घूर जा हरि कथा सुनते पारे ना एक बोले विक्षेप हाथे माला आछे नाम कछि हाथ चल छे किंतु मन टा कोथाय बहु दूर अन्य देशे थे ओखान कार कथा चिंता कर छे बाड़ी चिंता हो छे मैं की रकम आछे बाड़ी लोग के मन आछे ए सब चिंता छे अतच एखाने हरि नाम कर छे हाथों चलछे जपे आंगुलियों चलछे और संख्या माला चलछे किंतु मन ओखाने नाय ए रकम हवेते हरि नाम करले किछुई फल नाय बल्कि इटा अपराध। एक प्रकार श्रवण कालेते भगवत कथा आरंभ और अंत समय भगवत सभाते बसे नाना रकम विषय कथाते कथाबार्ता अथवा ओई चिंतन करा एटाके बोले विच्छेद अप्रतिपत्ति लय आ विच्छेद ना थाकलेउ समन आर कीर्तन करवार मध्ये जे असमर्थता इच्छा आछे করতে পারে না ওটাকে অপ্রতিপত্তি বলে। এরকম হতে হরি কথা শুনতে বসেছি কিন্তু মনই লাগছে না, মন লাগছে না, আলস্য সৃষ্টি করে, অথচ উৎসাহকে শ্রদ্ধার জীবন বলা হয়েছে, এটা তমগুণ থেকে উৎপন্ন হয়। কষায় শ্রবণ কীর্তন স্মরণাদি সাধন কালে ক্রোধ লোভ মদ মোহ অহংকার যে সংস্কার ওটাকে কষায় বলে। অনর্থ অবস্থা মে পূর্বপুর সংস্কারের অনুরূপ সাধারণ কারণে সেই ক্রোধ হয়ে যায়, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ কোন কথা একটা হয়ে গেল ক্রোধ হয়ে গেল। স্বাদিষ্ট খাদ্য বস্তুর আস্বাদন হরি কথা করতে করতে আর ওই খাচ্ছি, অর্থাদিতে লোভ, দেহ দেয় আদি বিষয়তে গর্ব, আমি খুব সুন্দর, আমি ধনী মানি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, এই লোকের সঙ্গে কি রকম বসব। রসাস্বাদ বিষাক্ত সুখ উৎপন্ন হবে ওই সময়তে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ আদি তে মন লাগে না, ওই বিষয় কথা মনে হয় টাকা পয়সা অর্থ জমিন জায়গাদ বন্ধু বান্ধবের প্রীতি এইসব মনে হয়, এই জন্য মন হরি কথাতে লাগতে পারে না। গ্রন্থকার বলছেন যে অনর্থ নিবৃত্তির পরেও, অনর্থ মানে ও যে অনেকগুলি বলা হয়েছে, হলেও সাধকের হৃদয়তে রজ আর তমগুণ থাকে কিন্তু যে প্রকারে অনর্থ অবস্থায় উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের বাধাকে উৎপন্ন করিয়া ভজন সাধক ভজনেতে বাধা হয়, নিষ্ঠা স্তরেতে ভজনে বাধক না হয়, অবাধক রূপেতে থাকে। অর্থাৎ অনিশ্চিতাবস্থাতে ভজনের বহু বাধা, নিশ্চিত অবস্থা হয়ে গেলে মনের স্থিরতা হয়ে গেলে বহু অংশেতে বাধা দূর হয়ে যায়, তথাপি অভি থাকে। ভগবত ভক্তির নৈষ্ঠিকি এই যে শ্লোকতে বলা হয়েছে, তদা রজস্তম ভাব কাম লোভাদ আয়াদশ্চে চেত এতত এতই অনাবিদ্যম সত্যম স্থিতম সত্যে প্রসিদ্ধতি। নৈষ্ঠিকি ভক্তি উৎপন্ন হয়ে গেলে আর কাম লোভ দ্বারা চিত্ত অনাবিদ্ধ থাকে আর শুদ্ধ সত্তমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই উক্ত শ্লোকে যে চকার তার সমুচ্চয় অর্থ ব্যাখ্যাতে কাম লোভ আদি রাজসিক তামসিক ভাবের অস্তিত্ব সূচিত হচ্ছে। ওই সময়তে কাম ক্রোধ ইত্যাদি থাকে কিন্তু নিত্যম ভাগবত সেবায়া নিত্য হরি কথা ভাগবত কথা শুনলে আর ভগবত গণের সেবা করলে এইটা দূর হয়ে যেয়ে নিষ্ঠিতা ভক্তি হয়ে যায় হয়ে যায়, তখন আর সেটি চঞ্চল থাকে না।
Therefore, Nishtha, Nishtha means Nishtha, fixed in one place. Therefore, Nishtha Bhajana Kriya means the mind is now fixed, fixed in hearing and chanting and also sometimes remembering Hari Katha. But before the appearance of this Nishtha Bhajana Kriya and after freedom from anansas, there are still five more stages to be freed from. That is loya nikshep pratipati kosaya rasa swada. Loya means, especially the time of kirtan, sleep will come. At the time of kirtan, sleep will come. And when it is more severe, at the time of Ketan, sleep will come. That means that obstacle is very strongly present. When sleep comes at the time of hearing, that means not so strong that it's there. And especially the time of remembrance, then sleep will always come. Because the disciple is still under the grip of tamagun, therefore this lord needs sleep. And this lord will cheat the devotee of tasting the sweetness of Bhagavan's Naam, form, rupa, and lila. Then Vikshep means distraction. The mind is the hand pulling the beads, but mind is also going to another universe. That means chanting, even though you're finishing your 64 rounds, but you are not Hare Krishna, you are thinking of my village, my car, my wife, my children, my relatives, the mind is distracted there. A pratipati means at this stage there is no sleep or no distraction, but you are not feeling enthusiastic, there is laziness there, a pratipati, disinterest. Then kosai means from nowhere, there's six obstacles, lust, greed, anger, enviousness, madness, and illusion. From nowhere appears, they come very strongly and catch you. And lastly, rasa swad. By mentally to taste different forms of material enjoyment, including thinking, I'm very great, I'm beautiful, I'm very talented speaker, or to think of different types of enjoyment. These are five stages which come after Nata Nivriti and before the appearance of Nishta. Therefore, at the time of Ananta Nivriti, the mind is still afflicted by especially the modes of Rajagun and Tamagun. Therefore, the mind, it produces transformation in the mind. But in Nishta, these five, as well as the modes of nature, cannot present obstacles to Hari Bhajan. Therefore, Bhagavatam also says, Tada Rajas, Tamo Bhava, Kamaloka, Rajas, Chay. That Rajagun and Tamagun enter the mind, produce the transformations of lust and greed, etc. But when the mind is free from that, then Sudasattva enters the mind, and the mind becomes peaceful. Therefore, conclusion, at this stage of Anishita Bhajan, there is no appearance of Sudasattva.
अभी प्रवचन के बाद में कुछ जलपान होगा और इसके बाद में 9 बजे के करीब कहाँ गया 9 बजे तो 9 बजे बसें आएंगी। आप सभी लोग वृंदावन जाएंगे, वहाँ पर नगर संकीर्तन होगा, हम भी जाएंगे। अपना सकली प्रस्तुत थाक में 9 समय ते गाड़ी आसबे और 10 समय ओखाने पहुंचे जाबेन। प्रस्तुत थाक में ऑल शुड बी रेडी एट 9। बसेस विल कम, स्पेशली सन्यासी एंड ब्रह्मचारी शुड गो विथ कर्तन खोल करताल एंड इट्स गौर प्रेमानंदे हरि।